ओम शांति। आज हम पहले नंबर में आने का थोड़ा सा लाभ जरूर लेंगे। वैसे तो आप सबका सेशन आज शाम से शुरू होगा, तो विचार चल रहा था कि हमारे मन के अंदर एक साइलेंस की अवस्था को कैसे लाए। एक होता है शांति, एक होता है साइलेंस, क्योंकि सारा दिन हम कार्य में व्यस्त रहते हैं और मन हमारा बहुत चलता है। कुछ तो मैनेजमेंट में चलता है, कारोबार में चलता है, कुछ स्वयं की आत्मा स्वयं से ही युद्ध कर रही होती है, या कोई ना कोई बातों में वो परवश हो जाता है मन। क्योंकि जब अंदर में साइलेंस होता है तो वो साइलेंस हमारी एक जो स्थिति हमारा स्टेबल होना चाहिए, एक अचल अडोल अवस्था बनना चाहिए, वो साइलेंस पावर से क्रिएट होता है। इसलिए आप जीवन में देख सकते हैं, हलचल भी आता है, गुस्सा भी बहुत आता है, इरिटेट भी जल्दी हो जाते हैं, और कोई ना कोई ऐसा थॉट मन में आता है जिसके वजह से हम बेचैन या स्ट्रेसफुल रहते हैं। तो जब अंदर की साइलेंस पावर लाने के लिए एक बहुत अच्छा एक माध्यम है, हम अपने साथ समय दें। ऐसा ही है ना, जितनी हम खुद की आत्मा के लिए समय देते हैं उतना हम कार्य को बहुत अच्छे से कम समय में ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं मेरे लिए समय ही नहीं है अपने लिए, क्योंकि हम इतना बिजी है, इतना बिजी है, जॉब में बिजी है, बिजनेस में बिजी है, फैमिली में बिजी है, और हर व्यक्ति आपसे समय की डिमांड करता है। भाई आप मुझे 5 मिनट दो, आप मुझे 10 मिनट दो, आप मुझे 15 मिनट दो, आधा घंटा दो, हर चीज। यहां तक भी आप घर में कोई एक जड़ वस्तु भी रखते हो, वो जड़ वस्तु भी आपसे समय मांगता है, उसकी मेंटेनेंस के पीछे, मतलब हर चीज के लिए हमारे पास समय एक मैं कहूंगी कि एक खजाना है जो 24 आवर्स में हम सबको देना है, और साथ साथ इस बॉडी को भी रेस्ट देना है। तो समय जो है हमारे पास नहीं होता है, परंतु मन में बहुत अशांत है, बहुत सवाल जवाब है, बहुत बातें मन में घूमता है। तो इस बात पर कभी ऐसा मौका आता है तो मुझे एक सुंदर स्टोरी याद आता है। एक बार एक लकड़हारा, माना जो लकड़ी काटने वाला व्यक्ति था, कारपेंटर था वो, उसको उसके मालिक ने एक टारगेट दिया हुआ है कि आपको इतनी लकड़ी काटना है। तो वो उमंग उत्साह से पहला दिन वो अपनी आरी लेकर के आता और वो लकड़ी काटता है और पेड़ पे चढ़ता है, लकड़ी तोड़ता है, उसको इकट्ठा करता है। सेकेंड डे भी जो है वो ठीक से काम करता है। थर्ड डे जो है देखते हैं तो उसकी लकड़ी बहुत कम कटी हुई होती है। तो ऐसे कुछ समय बीत जाता है तो उसी रास्ते में से एक व्यक्ति गुजर रहा था, तो वो रोज देखता है कि व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है, कुछ कर रहा है। उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो? कहते हैं आपको दिखाई नहीं देता कि मैं लकड़ी काट रहा हूं, पेड़ काट रहा हूं। तो उसने कहा कि एक काम करो, मैं सुबह यहां से गया था तो आप वहीं थे, अभी भी आप वहीं खड़े हो, तो आप ना उतर के आप अपनी आरी को तेज कर लो। वो कहता है कि मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है, मेरे सामने एक टारगेट है, मैं अपनी आरी को तेज कब करूंगा? ऐसे ही आज भागदौड़ी जिंदगी में हर चीज, हर सेकंड नया टेक्नोलॉजी है, नए लोगों से मिलना है, नई चैलेंजेस है, सब कुछ नया है। तो सब कुछ नया होने के बाद अगर आपको कहा जाए कि थोड़ा देर आप अपने साथ बैठ करके फोकस माइंड के साथ बैठिएगा, तो आप कहेंगे मेरे पास फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत नहीं है तो जो काम हम 3 घंटे में करते हैं, जो काम 3 घंटे का है, हम सारा दिन लगा लेंगे। फिर अगर आप समय निकालते हो, अपने आप को चेक करते हो, अपने स्वयं को समझते हो, क्योंकि हमारी सबकी आत्मा के अंदर आंतरिक शक्तियां हैं, इनेट पावर्स है, पर इस भागदौड़ी जिंदगी में ना उसको हम भूल गए हैं। उसको हमें बाहर निकालने के लिए कम से कम हम उसको पहचाने और हम अपने कार्य में उसको लागू करें, जीवन के व्यवहार में उसको हम लाए, उसके लिए हमें चाहिए प्यार से एक मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान ऐसी चीज नहीं है आप कभी कभी कर लो जब समय मिल जाए, ऐसा नहीं है। आप देखिए, जब हमें समय मिलेगा तो भोजन करेंगे, ऐसा नहीं है। भोजन, रोटी हमें आम तौर से जिंदगी में चाहिए। 3 टाइम नहीं फुर्सत है खाने के लिए, 2 टाइम, 1 टाइम के लिए तो समय निकालेंगे। अगर हमें कहे कि नहीं मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है भोजन करने के लिए भी, तो जिएंगे कैसे, काम करेंगे कैसे? ठीक इसी प्रकार से जो मेडिटेशन है, या आप अपने साथ जो हेल्दी टाइम देना चाहिए, हेल्दी टाइम, तो वो आप अपने आप को वो समय अवश्य देना चाहिए। वैसे तो हम कभी खाली बैठते हैं तो सोचते हैं कि बहुत सारी पुरानी बातें याद आती हैं, फ्यूचर याद आता है। हम समय तो दे रहे हैं पर चिंतन क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अपने साथ हमने हेल्दी टाइम नहीं दिया तो फिर जहां से हम भाग रहे हैं हम वहीं खड़े हैं। तो इसलिए अपने साथ एक हेल्दी टाइम देने के लिए स्वयं को जानना, स्वयं की शक्तियों को पहचानना और स्वयं के साथ वो समय बिताना। वैसे तो ये पूरा ही सेशन के बीच में आपको पता चलेगा कि आप अपने साथ क्या बातें कर सकते हो, क्योंकि कल से जो सुबह के समय का जो सेशन शुरू होगा, आपको एक बहुत सुंदर आपकी अपनी एक नई पहचान मिलेगी। जो अभी तक आपके पास एक पहचान है, इंट्रोडक्शन है, आइडेंटिफिकेशन है, तो जिसके आधार से आज हम एक दूसरों को परिचय देते हैं, परंतु आपको अपनी एक नई परिचय, आपको पता चलेगा कि मैं वास्तव में कौन हूं, और उसको डीपली आपको रियलाइजेशन भी होगा। मैं अगर आपको एक सिंपल से सिंपल, बिना कोई प्रूफ के अगर मैं कहूं मैं एक आत्मा हूं, तो शायद आपको मानने के लिए मुश्किल है। आगे आने वाला सेशन में वो क्लैरिटी रहेगी कि मैं कैसे एक सोल इस बॉडी के अंदर विराजमान हूं। पर मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए, मैं आपको एक बार को कहूंगी, 2 मिनट के लिए आप निश्चय कीजिएगा मैं एक आत्मा हूं जो इस दोनों भृकुटी के बीच में हूं, और ये शरीर एक अलग है और आत्मा एक अलग है। 2 मिनट के लिए आप इस बात को निश्चय कीजिएगा। जैसे मोबाइल और सिम है तो सिम अलग है और मोबाइल अलग होता है, तो ऐसे ही आप अपने आप को अभी 2 मिनट के लिए रिलैक्स होकर के फोकस कीजिएगा। मैं आपको थॉट दूंगी, अपने मन को कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा स्वयं पर, अपनी भ्रुकुटि के बीच में जहां पर आत्मा विराजमान है। मन में चित्र बनाइए, जैसे मिट्टी के दीपक में लो जगता है, दिया जगता है, ऐसे ही आप महसूस करके देखें। ये 5 तत्वों का शरीर एक अलग है, मैं एक आत्मा ज्योत की तरह हूं, एक शक्तियों की पुंज हूं। प्रकाश पुंज हूं जो सारा दिन कार्य करती है। मैं उपचेतना हूं। मन की आंखों से देखे अपनी चेतना को, वो बहुत शांत है, पावरफुल है। ओम शांति। अच्छा, कंसंट्रेशन हो पाया, एकाग्र हो पाया? नहीं हो पाया। किसी को हुआ? नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जब हम ये फील करते थोड़ा देर के लिए भी इससे डिटैच होते बॉडी से, जो आत्मा की शक्तियां हैं वो इमर्ज होती हैं। पर आत्मा की शक्तियां क्या हैं, उसकी अपनी ही क्वालिटीज हैं। जैसे कोई भी एक कंप्यूटर या लैपटॉप बनता है, उसके अपना ही एक कुछ सॉफ्टवेयर्स होता है जिस पर हमें काम करना है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी सोल के अपने कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पर हमें सारा दिन कार्य करना है। वो है 7 क्वालिटीज है आत्मा की। पहला है ज्ञान, नॉलेज। दूसरा है प्यूरिटी, पवित्रता। तीसरा है पीस, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति। अगर आपको ये 7 क्वालिटीज चाहिए ना, आपको बाहर नहीं मिलेगा। बाहर से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, परंतु नॉलेज तो खुद के अंदर ही है, उसको निकालना पड़ता है। उसी को ही विजडम कहते हैं। जब वो जाग जाता है तो विजडम बन जाता है। शांति बाहर से नहीं मिलेगा। मन अगर बहुत अच्छा है, सब जगह पे मुझे अच्छा दिखेगा, परंतु मन को हम सदा निरंतर अच्छा बनाने के लिए हमें अपनी इनेट क्वालिटीज को, ये हमारी आत्मा की आंतरिक शक्तियां हैं, इन शक्तियों को हमें मेडिटेशन के माध्यम से अपने लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लाने से लाइफ बहुत सरल और सुखमय जीवन बन जाता है। इसको वापस लाने के लिए हमें छोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ केवल मात्र एडिशन है इसमें, जो आपको टोटल लाइफ के अंदर सुख शांति दे सकता है। तो वैसे इसकी आगे फर्दर सेशंस चलेगा, पर एक्चुअली अभी आज का हमारा सेशन लेना है हमारी लक्ष्मी दीदी को। दीदी आएंगे और दीदी जो है विशेष, आप लौकिक और अलौकिक का, हम लौकिक दुनिया के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब भी किया है और अलौकिक जीवन में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप पिछले 40 से भी अधिक समय, 45 वर्ष से जो हैं आप इस ईश्वरीय जीवन में समर्पित जीवन के तौर से समर्पित किया है। और आप बहुत सारा स्ट्रेस मैनेजमेंट है, पॉजिटिव थिंकिंग है, कर्म योग के ऊपर है, तो ऐसे अलग अलग स्थानों पर सेशंस भी आप लेते हैं, तो विशेष करके जो है आज का आपका सेशन जो है हमारी दीदी जी लेंगे। शांति।
गुड मॉर्निंग। तो जो लोग पहले आए उन्होंने एक्सरसाइज भी की, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बॉडी फ्रेश हो गई। हाँ, अभी दीदी ने सुनाया। तो आज विशेष हम इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। कॉन्फ्रेंस में आए हैं, कौन सी कॉन्फ्रेंस है? हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन विंग की। हाँ, किस टॉपिक के अंतर्गत है? आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? बेलगाम से। और भाई साहब? आप चंडीगढ़ से। आप नेपाल से। आप नेपाल से। ये भाई लोग उड़ीसा से। अच्छा, भारत को सशक्त बनाने के लिए कर्म योग हमारा विशेष विषय क्या है? इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या है कि कर्म योग से भारत को कैसे सशक्त बनाए। आप चाहते हैं भारत सशक्त बने? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। हाँ, पर भारत सशक्त कैसे बनेगा? जब उसका एक एक नागरिक सशक्त बनेगा तभी तो सशक्त भारत होगा। तो कभी ये भारत सशक्त था जब ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जब यहाँ देवी देवताओं का राज्य था जिनको आज हम पूजा करते हैं, तब ये सशक्त था। लेकिन आज थोड़ी कर्मों में गिरावट आ गई है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी को ये विशेष प्रोजेक्ट लेना पड़ा कि हमारा भारत सशक्त भारत बने, तो उसके लिए कर्म योग। क्योंकि कर्म तो हम जब से जन्म लिया है तब से लेकर के जीवन के आखिरी क्षण तक कर्म चलता ही रहता है, क्योंकि जब कर्म इंद्रियां मिली हैं तो कर्म करना स्वाभाविक है। देखना, उठना, बैठना, सोना, ऑफिस जाना, खाना बनाना, कमाई करना, सब क्या है? कर्म है, कर्म है। तो कई लोग कहते हैं कि हम कर्म सन्यासी हैं। बेसिकली कर्म सन्यासी कोई होते नहीं है। जो कहते हैं कि हमने सन्यास किया है, चलो वो जीव को उत्पार्जन नहीं करते हैं, ठीक है, जॉब नहीं करते हैं, कहीं से मांग करके खा लेते हैं, जीवन निर्वाह कर लेते हैं, तो वो बाकी के कर्म तो सब करते हैं, नित्य कर्म करते, देखना, पलक झपकना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है। हमारे यहाँ पे ना विदेशियों के भी कई प्रोग्राम चलते हैं, तो हमारे पास बहुत विदेशी आते हैं और हमारा ज़्यादातर प्रोग्राम जो है वो हिंदी में चलते हैं। तो फॉरेनर्स जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हमको ना हिंदी भाषा सीखनी है। क्या सीखना है? हिंदी भाषा सीखनी है, क्योंकि हम डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्यों को सुन सके। तो बड़ी चिंतित थी कि हम कैसे सीख सकते हैं, हिंदी इज वेरी टफ, डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो हमारे एक ब्रदर हैं, बहुत प्यार से, बहुत ह्यूमरस है, तो उनके पास गए, तो ब्रदर आई वांट टू लर्न हिंदी बट हिंदी इज वेरी डिफिकल्ट। तो भाई ने बोला, नो नो सिस्टर, हिंदी इज वेरी इजी। हाउ, कैसे है ये? तो कहा कि मैं जो शब्द बोलू ना तुम उसके पीछे सिर्फ ना बोलना। क्या बोलना? ना। मैं बोलता हूँ खा, तुम बोलो ना, खाना। मैं बोलू पी, तुम बोलो ना, पीना। मैं बोलू सो, तुम बोलो ना, सोना। मैं बोलू चल, तुम बोलो ना, चलना। इतने थोड़े से शब्द उन्होंने उनको ऐसे करवा दिए, तो कहा इन शब्दों को याद कर लो, हिंदी इज वेरी इजी, ठीक है कि नहीं? बड़े सरल ढंग से उनको वो कहते ये तो मैं कर लूंगी। तो मतलब चलना, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, कर्म सब कुछ हमारा, पलक झपकना भी हमारा कर्म है, सोचना भी हमारा कर्म है। तो कर्म हम जन्म से लेकर, क्योंकि जीवन, जन्म और मृत्यु दोनों के बीच में क्या आते हैं, हमारे कर्म। और हर व्यक्ति क्या चाहता है, हम अच्छे कर्म करें। आप सब क्या चाहते हैं, अच्छे कर्म करना चाहते हैं ना? और दुनिया में दो प्रकार के कर्मों के बारे में हमें बताया गया है या हमने सुना है, कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के कर्म? सत्य कर्म, असत्य कर्म, या उनको कहें पाप कर्म और पुण्य कर्म। सिंपल भाषा में हम सुनते हैं कि एक होते हैं पाप कर्म और एक होते हैं पुण्य कर्म। अब पाप कर्म किसे कहा जाए, पाप कर्म किसे कहा जाए? हाँ जी, सोसाइटी के वेलबींग के लिए जो किया जाए, हाँ उसके लिए जो किया जाए वो सत्य कर्म है, पुण्य कर्म है। आप क्या सोचते हैं भाई साहब? हाँ जी, दुख ना मिले, हाँ वो सत्य कर्म है। इस पर एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है कि एक कसाई था, कसाई समझते हैं, बूचर। तो वो बड़ी कॉमन सी स्टोरी है ये। तो वो एक गाय के पीछे दौड़ रहा था और गाय उसके वाइब्रेशंस को भांप गई थी, तो भागती जा रही थी, भागते 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 वो एक जंगल में घुस गई और उसकी कसाई की आंखों से वो ओझल हो गई। वहां एक महात्मा जी कुटिया में रहते थे और वो बाहर ही बैठे थे, तो कसाई ने उनसे पूछा, क्या आपने यहां से गाय को जाते हुए देखा? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने यूं सिर हिला दिया कि मैंने नहीं देखा, लेकिन देखा तो था। लेकिन महात्मा जी को भी पता था ये जा रहे हैं तो उसको काटने मारने के लिए, तो इसलिए उन्होंने भी कह दिया नहीं देखा। तो महात्मा जी ने झूठ बोला ना, ये सत्य बोला, सत्य कर्म है वो। भले झूठ भी बोला उसमें भी पुण्य कमाया, ठीक है कि नहीं? क्योंकि उसको मरने कटने से बचाया उस झूठ ने। वैसे कहते हैं झूठ बोलना पाप है, वैसे तो यही सिखाया जाता है झूठ बोलना पाप है, लेकिन उस झूठ में भी जैसे भाई साहब ने कहा सत्य कर्म है, पुण्य कर्म है। तो इसी तरह से हमें सत्य कर्म क्या है या पुण्य कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, वैसे तो हम दो प्रकार के कर्म ही सोचते हैं, पाप और पुण्य, लेकिन यहां परमात्मा ने हमें चार प्रकार के कर्म के बारे में बताया है। एक कर्म वो होते हैं जिसका ना पाप बनता है ना पुण्य बनता है, जिसको कहते हैं अकर्म, न्यूट्रल कर्म। जैसे गाड़ी है ना, न्यूट्रल गियर में खड़ी रहती है, ना फर्स्ट में है ना किसी और गियर में। तो इसी तरह से हमारे भी कुछ कर्म जीवन भर की दिनचर्या में ऐसे होते हैं जो ना पाप होता है और ना ही पुण्य बनता है उसका, पर न्यूट्रल होते हैं, कर्म करते हैं हम दिन भर की दिनचर्या में। दूसरे प्रकार के कर्म जिसको हम पाप कर्म कहते हैं। अब ये पाप कर्म क्या है? जब हम अपने को शरीर समझते हैं, देह समझते हैं, जिनके प्रति हम कर्म करते हैं उनको भी दैहिक दृष्टिकोण, दैहिक संबंध से देखते हैं, और बीच में कोई ना कोई विकार विकृति होती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसके वश होकर के हम कर्म करते हैं, और उस कर्म के करने के पश्चात हमारे मन में उसके रिटर्न की इच्छा बराबर बनी रहती है। मैंने इनके लिए इतना किया, इन्होंने मेरे लिए क्या किया, रिटर्न की इच्छा। तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे कर्म पाप कर्म के खाते में चले जाते, कोई डालता नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली चले जाते। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। क्योंकि हमने अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, उसमें रह करके वो कर्म किए, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसके वश होकर के कर्म किए, तो वो कर्म करने के पश्चात हमारी रिटर्न की इच्छा, इवन घर में बच्चों को पालते भी है ना, तो भी रिटर्न की इच्छा बनी रहती है। हम बुजुर्ग होंगे ना, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। मैंने तो यहां तक देखा कई लेडीज को, गांव की लेडीज, बेटी को दूध और पानी आधा आधा मिला करके पिलाएंगे, बेटे को प्योर दूध पिलाएंगे। व्हाट इज दिस? नहीं, बेटी तो अपने घर चली जाएगी ना, बेटा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। क्या है, कौन सा कर्म हम कर रहे हैं, ये हमें जानकारी ही नहीं होती है। तो इसीलिए वो हमारे जो भी हम कर्म करते हैं उसकी मैं छोटी सी डेफिनेशन दी है, तो वो सारे के सारे कर्म दिनचर्या में जो हम करते हैं वो ऑटोमेटिकली पाप कर्म के खाते में चले जाते हैं। तीसरे प्रकार के कर्म जिसको पुण्य कर्म कहा जाता है, जब हम खुद को एक ह्यूमन बीइंग समझते हैं, एक इंसान समझते हैं, जिनके प्रति हम कर्म करते हैं उनको भी एक ह्यूमन बीइंग समझते हैं, और इंसानियत के नाते से कर्म करते हैं, लेकिन उसमें भी अगर रिटर्न की कोई इच्छा नहीं है तो वो हमारे कर्म पुण्य का खाता जमा करते हैं। लेकिन अगर उसमें भी हमें नाम मान शान की इच्छा है समाज के लिए काम, लेकिन नाम मान शान की इच्छा है, आज सोशल काम करने वाले भी बड़ी इच्छा रखते हैं, मेरे को स्टेज पे मेरे नाम होना चाहिए मेरे। एक छोटा सा एग्जाम्पल में जो आप बीता देखा, आपके एरिया में पता नहीं रामलीला होती है या नहीं होती है, हमारे एरिया में रामलीला होती है, तो हमारे थोड़ी दूरी पर रामलीला हो रही थी और उसके स्पीकर लगे हुए थे सारी पूरी गली में पूरे मोहल्ले में। तो वहां पर रामलीला में लोग कुछ ना कुछ दान करते हैं, तो वो दान कर रहे एक भाई ने अपने छोटे से बच्चे को, 5-6 साल का ही होगा, उसको 101 रुपया दिया। पुरानी बात है, आज वो तब तो शायद 500-1100 देता, नहीं 101 रुपया दिया और कहा कि ये तुम ना वहां पर स्टेज पर देख के आओ, जो भाई खड़े हैं उनको दे आओ, और बता के आना फलाने दुकान वाले ने भेजा है, बता के आना फलाने दुकान वाले ने भेजा है, अपनी दुकान का नाम बता के आना। बेटा दौड़ता हुआ गया, हाँफता हुआ ऊपर स्टेज पे चढ़ा और फटाफट 101 रुपया पकड़ाया और वापस आ गया। आने के बाद पापा बोलते हैं, तुमने दुकान का नाम तो बताया ही नहीं। कहते पापा मैं भूल गया। माना वो 100 रुपए या 101 रुपया देने के पीछे इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है कि मेरी दुकान की पब्लिसिटी हो जाए, क्योंकि पूरे मोहल्ले में पूरे एरिया में माइक लगे हुए हैं, और वैसे तो शायद 100 रुपए में उसकी पब्लिसिटी नहीं होती थी, इतने माइक भी उसको नहीं मिलते थे, लेकिन उसने इस मौके का लाभ है समाज सेवा, क्या कर रहा है वो, समाज सेवा श्री राम के प्रति या रामलीला के प्रति उसको भावना, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या है कि मेरी नाम मान शान हो जाए। तो इसी तरह से हम अगर नाम मान शान रख कर के कर्म करते हैं तो वो पुण्य कर्म करते हुए भी पुण्य का खाता जमा नहीं होता है। कहा जाता है एक हाथ से दान करो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, कहा जाता है गुप्त दान महापुण्य। पर हम आज दान कैसा कर रहे हैं, दिखा करके शो करके? तो परमात्मा भी कहता है, भगवान भी कहता है कि गुप्त दान होता तो मेरे पास आता, मैं तुझे 100% रिटर्न देता, लेकिन तुमने तो कह करके और इतनी पब्लिसिटी, वो तो तुम्हारा यही खाता पूरा हो गया ना, पब्लिसिटी ले ली ना तुमने, इसीलिए आज व्यक्ति दान पुण्य करते हुए भी पुण्य उसका जमा नहीं हो पा रहा। अगर वो भी हमारा पुण्य जमा हो रहा होता तो मैं समझती हूं कि आज इतनी हमें बीमारियां और इतने हॉस्पिटल और इतने दवाइयों का सेवन ना करना पड़ता। अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, दिल्ली में एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है गंगाराम हॉस्पिटल, शायद आपने नाम सुना भी हो, या कोई भी हॉस्पिटल है मान लो, वहां आपका नॉन टू, आपका जानकार या आपका रिलेटिव एडमिट होता है तो जाता है, उसको डॉक्टर कहता है नहीं इस बीमारी के लिए आपको एडमिट होना पड़ेगा, ठीक है आप कहते एडमिट, एडमिशन हो गया उसका और आप 2 दिन के बाद जाते हो, उनको ग्लूकोज चढ़ा हुआ है, फिर अगेन नेक्स्ट 2 दिन के बाद जाते हो आप उनसे मिलने के लिए, उसको यूरिन की भी कैथेटर लग गई, फिर आप जाते हो तो उसको ऑक्सीजन भी लग गई, फिर आप जाते हो तो उसको और कई नलियां लगी पड़ी हैं। तो हमारे मन से मुख से क्या निकलता है, जब 15-20 दिन महीना भर हो जाता तो हमारे मुख से क्या निकलता है, पता नहीं कौन से कर्मों का फल भोग रहा है, निकलता है निकलता है, तो कर्मों का फल भोग रहा है। तो अगर हमारे कर्म पुण्य का जमा होता तो आज हमें इतने बीमारियां और इन सब प्रॉब्लम्स का फेस करने का कम होता या ना होता, क्योंकि देखो तो आज हमारी मेडिसिन के नाम भी कैसे हैं। एक दो मेडिसिन के नाम मैं बताती हूँ, मान लो किसी को दिया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, आजकल कम देते हैं वैसे, जेंटामाइसिन नाम सुना होगा, और कुछ नहीं करोसिन तो सुना ही है ना, एंटीबायोटिक्स एंड सिंपल पैरासिटामोल करोसिन। करोसिन का नाम करोसिन क्यों रखा गया होगा, करोसिन खाओ करोसिन है, जो भी कहो मैं तो ऐसा सोचती हूँ, खाओ करोसिन तो खाओ करोसिन। काम पोज, आपका पोज नेचुरल काम नहीं हो रहा, मन शांत नहीं हो रहा, तो डॉक्टर के पास जाते तो क्या कहते, इंजेक्शन दे दो, कॉम्पोज दे दो, ट्रैंकुलाइजर दे दो। स्ट्रेप्टोमाइसिन माना मेरे द्वारा किया गया पाप कर्म, उसके फल स्वरूप मुझे ये दवाइयों का सेवन करना पड़ रहा है। तो ये अगर हमारा पुण्य का खाता, आज हम पुण्य करना चाहते हैं, कहते हैं जी पैसा देंगे पर हमारा फोटो लगना चाहिए, पैसा देंगे पंखे पे हमारा नाम लिखवा दो, है ना, बहुत सारी जगह पे, हाँ कहीं मंदिर में जाओ आप, मंदिर में नामों की सूची लगी हुई है, इन्होंने 5,000 एक दिया, इन्होंने 11,000 दिया, इन्होंने 500 एक, ये कितनी बड़ी सूची लगी पड़ी है। और मैं एक बात सोचती हूँ, जीवन पर्यंत आप कमाते हो, कितनों के आपने कपड़े पहन लिए, कितना आपने खाने पीने पे यूज कर लिया, कितना आपने बच्चों पे यूज कर लिया, उसकी तो कोई खाता सूची नहीं रखी। कितने की फल सब्जियां आई हमारे जीवन पर्यंत, उसकी तो कोई खाता, एक दान करने में मेरा नाम लिखा हुआ होना चाहिए। तो दान कैसे लगेगा, पुण्य कैसे बनेगा, है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है ना। तो इसीलिए हम पुण्य करते हुए भी आज हमारा पुण्य का खाता दिखाई नहीं दे रहा है। उसी के फलस्वरूप ही हम कहते हैं ये इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी टेंशन और इतनी डिजीजेस हमारे जीवन में आ रही हैं, इतनी परिस्थितियां आ रही हैं। इसके पश्चात एक और कर्म का खाता जिसको हम कहते हैं सत्कर्म, सुकर्म या श्रेष्ठ कर्म। ये कर्म ठीक पाप कर्म के विपरीत है। पाप कर्म में हम अपने को शरीर समझा, देह समझा, और यहां पर हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, जो आपको कल सुबह सेशन कराया जाएगा कि आप कौन हैं। आप एक आत्मा हैं, मस्तक के बीच में, जैसे दीदी ने थोड़ा सा दिया, कल आपका फुल सेशन होगा उसमें, कि जब हम अपने को ओरिजिनल स्टेट में कि मैं कौन हूं, मैं ये हड्डी मांस का शरीर नहीं हूं, इस शरीर को चलाने वाली एक चेतना शक्ति आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं, जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, जिनके प्रति हम कर्म करते हैं उनको भी आत्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, भले संबंध उनका हमारा कुछ भी है लेकिन है तो वो भी एक आत्मा, हा? वो किसी भी रोल में है पर एक्चुअल वो सोल है, एक्चुअल वो सोल है। वो हमारे साथ पति पत्नी के संबंध में है, भाई बहन के संबंध में है, माँ बाप के संबंध में, भाभी चाची ताई माँ, जो भी संबंध है, परंतु एक्चुअली आई एम ए सोल एंड ही और शी इज सोल, और वो उनका रोल है, वो इनका सृष्टि रंगमंच पर रोल है, वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब हम उनको भी आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं, और बीच में परमात्मा पिता जो हम सोल्स का फादर है, आत्माओं का पिता है, निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर, उसकी मैं संतान हूं, तो वो सोल का फादर हम उसको याद करते हैं बीच में, और कर्म करने के पश्चात रिटर्न की कोई इच्छा नहीं। जिसे गीता में कहा गया है, हे अर्जुन कर्म किए जा, फल की इच्छा नहीं कर, क्योंकि कर्म हमारा बीज है और हर बीज का फल अच्छा या बुरा मिलना ही मिलना है, चाहे आप चाहो या ना चाहो, ठीक है कि नहीं? हर कर्म का फल आपको मिलना ही मिलना है। वो बात अलग है कि कुछ कर्मों के फल तुरंत मिलते हैं, कुछ कर्मों के फल कुछ समय के बाद मिलते हैं, कुछ कर्मों के फल लंबे अरसे के बाद मिलते हैं, और कुछ कर्मों के फल अगले जन्म में भी मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर धनिया है, धनिया जानते हैं सभी, हाँ? धनिया को आप भूमि में बो दो, एक हफ्ते बाद आप हरा भरा धनिया काट सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, आ जाते हैं ना, हाँ? और अगर आपको सब्जी बोनी है तो एटलीस्ट आपको 2 मंथ्स चाहिए कोई भी सब्जी आने के लिए। अगर आपको कोई अनाज की खेती करनी है तो उसके लिए मिनिमम 6 मंथ चाहिए, हा? और अगर आपको कोई फल बोना है तो उस फल के लिए कभी कभी कहा जाता है दादा बोए पोता खाए। वो एक हफ्ते में हरे धनिये की तरह नहीं आ जाएगा, लेकिन ये तीनों प्रकार की खेती जो है उसको बार बार बीज बोना पड़ता है, बार बार हल चलाना पड़ता है और बार बार काटना पड़ता है। लेकिन जो फलों के बगीचे होते हैं, एक बारी लगने के बाद फल तो काफी समय के बाद आता है, 5 साल 7 साल 10 साल। मैं तो एक सेंटर पर गई, अपने मेरे को कहा कि आज ना अपने घर का आम आया है। मैंने कहा अच्छा, कह रही दीदी पर आया 21 साल के बाद है। मैं 21 साल कहा, 21 साल के बाद ही पहला बड़ा अच्छा फल आया है, बहुत सारे फल आए हैं, आया बहुत समय के बाद। आजकल तो ग्राफ्टिंग कर देते हैं, दूसरा दूसरा सिस्टम, लेकिन ओरिजिनल जो है वो कर्म मैंने बीज जो बोया उसका फल। लेकिन उस बीज को बार बार नहीं बोना पड़ता है, फलों के बीज को बार बार नहीं बोना पड़ता है। सेबों के बगीचे हैं जी हमारे कश्मीर में, पेटियां भर भर के सेब आ रहे हैं। हमारी एक पड़ोसन थी, वो हर बारी हमें भी एक पेटी दे जाती थी, इतनी पेटियां उसके पास आती थी। कहते हमारे सेबों के बगीचे हैं, हमारे आमों के बगीचे हैं, एक ही पेड़ पे कितने सारे आम आ जाते हैं। तो हर कर्म का फल हमें मिलना ही मिलना है, चाहे इंस्टेंट मिले, कुछ समय के बाद मिले, लंबे अरसे के बाद मिले, या कभी भी मिले, लेकिन आपको फल, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कर्म कभी वेस्ट जा नहीं सकता। बीज कभी, चाहे अच्छा हो या बुरा, आज हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें अवेलेबल है, किस आधार से है? आज आपको हेल्थ अच्छी मिली, आज आपको फाइनेंशियल स्टैंडर्ड अच्छा मिला, आज आपको सुंदरता मिली, आज आपको संबंधी अच्छे मिले, मैं तो कहती हूँ पड़ोसी भी अच्छे मिले, तो क्या कहते हैं हमारा बड़ा गुड लक है, कहते हैं नहीं कहते, हमारी किस्मत अच्छी, हमें पड़ोसी भी बहुत अच्छे मिले, हमें माँ बाप बहुत अच्छे संस्कारी मिले हैं। किसी के माँ बाप देखो मर्डरर, हत्यारे हैं, जुआरी हैं, शराबी हैं, और किसी के माँ बाप बहुत अच्छे संस्कार देने वाले। तो जो कुछ आज आपको मिला है व्हाटसोएवर, क्या है कर्मों के फल। पीछे जो बो करके आए हैं वो आज हम काट रहे, और आज जो बोएंगे वो आगे काटेंगे, ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है ना, आज बोएंगे तो कल फसल आएगी। तो यहां पर चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो आपको बाद में बताया भी जाएगा। तो सतयुग और त्रेता जो है वो इस जन्म में, इस समय जो हम परमात्मा का ज्ञान लेते हैं और उसके बाद हमारे जो कर्म होते हैं, तो उसका फल हमें 21 जन्मों के लिए मिलता है। अर्थात एक बारी आपने बीज बो लिया, तन मन धन जो भी सेवा में लगा दिया, उसका फल आपको 21 जन्मों के लिए मिलेगा। अर्थात हर जन्म पेटियों की पेटियां आती रहेंगी, बार बार बीज बोने की जरूरत नहीं। लेकिन जो द्वापर युग से हमारे कर्म होते हैं वो 3 जन्म का खाता चलता है। पीछे जो बो के आए वो आज फसल काटते हैं, जो आज बोएंगे वो, क्योंकि वैसे भी जब अनाज आता है घर में, तो मान लो एक गेहूं ही आई, तो कितनी सारी गेहूं बोरियों की बोरियां आई आपकी फसल, लेकिन उसमें आपने बहुत सारी फसल मार्केट में भेज दी बेचने के लिए, और कुछ फसल का हिस्सा अच्छी क्वालिटी का आप क्या करते हो, उसको रख देते हो फर्दर बीज बोने के लिए। अगर वो नहीं रखेंगे और नहीं बोएंगे तो फर्दर आपकी फसल कैसे आएगी, आ नहीं सकती है ना। तो इसीलिए हम भी इस जीवन में कर्म करते हैं तो पिछले जन्म के लेकर के आते हैं, और इस जन्म में जो बोते हैं वो फर्दर अगले जन्म में काटते। इसीलिए हमें सिखाया जाता है दान करो, पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, किसी को दुख नहीं दो, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं। हम भले हम अनजाने में कर लेते हैं लेकिन जब हमें ज्ञान मिलता है तो हमें समझ आती है। इस पर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि एक सेठ जी थे गांव में, एक गांव में एक सेठ जी थे, तो उनको बहुत इच्छा थी कि मेरी जो बहू रानी आए, हर एक को इच्छा होती है, वो बहुत सुंदर हो, सुशील हो, सुलक्षणी हो, अच्छी हो। उनको ऐसी ही बहू मिली, सुंदर, सुशील, सुलक्षणी। तो गांव का घर कैसा होता है, पहले के जमाने में कैसे घर होते थे, बीच में चौक होता था और साइडों में सारे कमरे होते थे और मेन गेट के पास एक बैठक होती थी। हाँ, ऐसे ही घर होते थे ना। तो उस बैठक में एक दिन सेठ जी बैठे थे, बैठते ही थे, बहू अंदर थी, काम कर रही थी, चौक में भी थी, तो बाहर एक मंगता भिखारी जैसा व्यक्ति आया और उसने आवाज लगाई, मैं 3 जन्म का भूखा हूं। वो बहू रानी तो अंदर से होशियार थी, तो उसने अंदर से जवाब दिया, यहां कल पकाई थी, आज बांसी खा रहे हैं, कल उपवास रखेंगे। अब उसने वो बाहर वाले व्यक्ति को ऐसा बोला, बैठक में सेठ जी बैठे थे, उनके कानों में ये शब्द गूंज गए, यहां कल पकाई थी, आज बांसी खा रहे हैं, कल उपवास रखेंगे। तो सेठ जी तो एकदम गर्म हो गए, गुस्साने लगा, हमारा ये एक सेठ का घर है, यहां रोज इतने पकवान बनते हैं, इतनी चीजें, कोई कमी नहीं है घर में, और ये क्या बोल रहे हैं, ये तो हमारी बेइज्जती करवा रही है। हमने तो सोचा बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी सुशील है बहू, सुलक्षणी है। तो उठ करके सेठ जी सीधे पंचायत में चले गए, क्योंकि बहू का संबंध था ना, तो सीधे पंचायत में गए, भाई ये तो बहू हमने नहीं रखनी, इसने तो मेरी नाक कटवा दी, इसने तो ऐसा बोल दिया। तो पंचायत वालों ने कहा, देखो एक तरफ की बात सुनकर के न्याय नहीं कर सकते, बहू को बुला लेते हैं, क्या भाव था उसका। जब उसे बुलाया गया पंचायत में तो उसे पूछा गया, तुमने ये कहा? हाँ, कहा क्यों कहा? कहा वो जो बाहर भिखारी जैसा वो व्यक्ति था, उसने कहा मैं 3 जन्म का भूखा हूं, उसने ये नहीं कहा मैं 3 दिन का भूखा हूं जो मैं उसे रोटी दे देती, उसने कहा मैं 3 जन्म का भूखा हूं, अर्थात पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए, कुछ दान पुण्य नहीं किया, कुछ अच्छा वो नहीं किया, जिसके आधार पर मुझे आज ये जन्म मिला है, गरीबी का, असहाय, तो आज भी मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि बीज बोया ही नहीं है, तो आज भी अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरा अगला जन्म भी खराब हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने कहा मैं 3 जन्म का भूखा हूं। उसने कहा 3 जन्म का भूखा हूं, तो बहू रानी ने कहा 3 जन्म का भूखा है, तो मैंने मन में सोचा यहां कल पकाई थी, अर्थात पिछले जन्म में इन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए थे जिसके आधार से आज ये एक सेठ का घर बना है, यहां कोई कमी नहीं है, लेकिन आज इस घर परिवार में कोई दान पुण्य करने की प्रथा ही नहीं है, तो कल पकाई थी आज बांसी खा रहे हैं, और कल अगर आज बोएंगे नहीं तो कल उपवास रखेंगे। तो पंचायत वालों ने कहा ये तो बहुत अच्छी श्रेष्ठ बात है, ये तो कितनी समझदारी की बात है कि हर व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ दान पुण्य अच्छे कर्म करने चाहिए। आपको क्या लगता है, करने चाहिए नहीं करने चाहिए? इसीलिए हम मंदिर जाते हैं, हम पैसे गुल्लक में डालने के बजाय बच्चे के हाथ में देते हैं, ताकि उसको भी ये संस्कार पड़े। हमारे माँ बाप ने भी यही किया होगा ना, तभी वो संस्कार पड़ता है। अगर वो संस्कार नहीं पड़ेगा तो हम भी कुछ दान पुण्य करेंगे नहीं। आज देखो मॉल में जाएंगे, कितने कपड़े खरीदेंगे, नई नई चीजें खरीदे, उनको को दान के लिए नहीं, इतना ही काफी है। 11 रुपए बहुत है, 101 रुपए बहुत है, इतना बहुत है। अरे भाई होटल में जाएंगे इतने इतने पैसे खर्च करके आएंगे। तो परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं, ये है कर्मों के खेती। तो कर्म हम कैसे, कर्म को अब योग में कैसे बदलें? अब कर्म हमने जीवन में क्या किया कि कर्म अलग कर लिया और योग अलग कर लिया, लेकिन यहां हमें परमात्मा सिखाते हैं कर्म और योग का बैलेंस, कि कर्म करते हुए तुम्हें परमात्मा की याद में रहना है। हम क्या सोचते, सुबह गए मंदिर गए, थोड़ा सा पूजा पाठ कर लिया, धूप बत्ती दिखा दी, चलो बाकी सारा दिन कर्म करो, और शाम को फिर गए तो थोड़ा सा कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं किया, थैंक्स भी नहीं करते गॉड का, परमात्मा का। तो परमात्मा कहते नहीं, हर कर्म हमें क्या करना है, परमात्मा पिता की याद में रह करके करना है। तो आप कोई भी कर्म है उसको परमात्मा के साथ जोड़ करके करते हैं तो आपका कर्म सत्कर्म बन जाता है, श्रेष्ठ कर्म बन जाता है, सुकर्म बन जाता है, जो पुण्य कर्म से भी ऊंचा है। तो इसीलिए हमको हर कर्म करते हुए क्या करना है, क्या करना है, वो यहाँ पर सिखाया जाएगा कि कैसे आप हर कर्म करते हुए परमात्मा पिता की याद में रह करके ये कर्म कर सकते हो। तो कर्म फिर आपके पूजनीय बन जाएंगे, वर्क इज वर्शिप हो जाएगा, ना कि वारशिप। आज क्या कर्म हो रहे हैं, वारशिप। कर्म पूजा बने ना हमारे, हम पूजनीय थे, देवी देवताएं हमारे पूजनीय थे, कर्म उन्होंने ऐसे किए, तो हमें भी पूजनीय कर्म करने हैं। तभी तो जब हम कर्मों में ये भाव को रखेंगे, परमात्मा पिता की याद के भाव को रखेंगे और रिटर्न की इच्छा के भाव को नहीं रखेंगे, रिटर्न नहीं, अपने आप मिलना है हर कर्म का। आप भगवान, आप तो क्या, कोई व्यक्ति तो क्या, भगवान भी चाहे तो आपके किए हुए कर्म को काट नहीं सकता है, काटने भुगतान अच्छा या बुरा करना ही होता है। तो इसीलिए हमें कर्म को क्या करना है, सत्कर्म सुकर्म बनाना है, परमात्मा की याद में रह करके हर कर्म करना है। जैसे ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठता है ना, तो वो भी हाथ जोड़ता है कि भगवान, वो सिर्फ पहले जोड़ता है, लेकिन हम कहते हैं कि आप हर सेकंड भी परमात्मा को याद कर सकते, हर कर्म करते हुए साथ साथ परमात्मा की याद रहेगी तो आपका हर कर्म शक्तिशाली हो जाएगा, आप शक्तिशाली हो जाएंगे, और आपके शक्तिशाली होने से सशक्त भारत, तो क्या सशक्त विश्व बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा यही भारत, जो हमारी प्रधानमंत्री की भी इच्छा है कि हमारा भारत कैसा बने, विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनेगा। तो इसलिए हम कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का क्या करेंगे, संकल्प करेंगे। एक ही कर्म से आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास मान लो 1000 रुपया है, चाहे तो आप किसी होटल में ढाबे में खा पी के पूरा कर दो, और कोई बैड कर्म में भी लगा दे, कोई ड्रिंक व्रिंक करके लगा दे, और उसी पैसे को कोई इन्वेस्ट कर दे, और उसी पैसे को कोई एफडी करा दे, पैसा तो वही है ना, तो जिस उसमें जाएगा वैसा रिजल्ट मिल जाएगा। हा? तो खाना भी आपका एक कर्म है, तो खाना खाते हुए अगर आप परमात्मा की याद में रह करके खाते और ऐसे ही खाते हैं और एक बातचीत करते हुए खाते हैं, तो हर उसका अलग अलग खाता ऑटोमेटिकली चला जाता। तो इसी तरह से हम सारे दिन में दिनचर्या में बहुत सारे कर्म करते हैं, तो जो कर्म जिस उसमें कर रहे हैं या आप परमात्मा की याद में रह करके, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने कर्म को, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा का खाता बना रहे हैं, हाँ खजाना जमा भी कर रहे हैं। तो इसलिए इस जीवन में हम आए हैं तो कर्म भी करते हुए साथ साथ हम श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी का खाता भी जमा करते रहे। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है। ओम शांति। आप सभी ने ध्यान से सुना, बहुत अच्छा। ओम शांति।